परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26/10/93 दोपहर 3 बजे वृंदावन में हुआ।
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण 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 बात आई है कि वेद शास्त्रों में गोमाता की महिमा कही है। गाय का लक्षण गाय की महिमा और गौशाला की मजर्षि आदि विदेशी पशु पालन पर उसके दूध को गाय का दूध में मिलाकर धर्म भेद विषया किया जा रहा है। कृपया स्पष्ट करें। हमने शास्त्रों की सुनी है, वेदों की बात भी ऐसी आई है कि गाय को कोई मारपीट करेगा तो उसको हो शीश ऐसे विद्धन करो मन गोली लगा दो, ऐसी बात मैंने सुनी है वेदों की। और शास्त्रों में बहुत गौ की महिमा आई है और सृष्टि की रचना जब हुई तो ये सात्विक राजस तामस ये सृष्टि होती है गुणों के अनुसार, तो सात्विक चीज से ऊपर के लोगों का निर्माण हुआ, देवता आदि का निर्माण हुआ, उसके बाद गौ का निर्माण हुआ। तो गौ का निर्माण देख करके भगवान बड़ी प्रसन्न हो गई, ब्रह्मा जी की कृति पर राजी हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो देवताओं ने कहा कि भाई हमारी ऐसी बढ़िया है तो इसमें हमारा स्थान होना चाहिए, हम रहेंगे। देवताओं के निवास के लिए गौ का स्थान हुआ। तो गौ के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं और उसने सब अंगों में देवताओं का निवास बताया है। मेरे को कंठस्थ याद नहीं है, गौ की मूर्ति है उसमें आपने देखा होगा, मुख में अग्नि का निवास है, नासिका में अश्विनीपुरा का निवास है, कानों में कर्ण का दिशाओं का निवास है, ऐसे उनके थनों में समुद्र का निवास है, उसके खुरों में सर्प देवता का निवास है, ऐसे सब देव साथ गौ में आकर के रहने लगे। तो लक्ष्मी जी और गंगा जी देरी से आई, कि ये बड़े होते हैं ना वो स्टेशन पर भी देरी से जाया करते हैं कि मैं जगह मिल ही जाएगी, ऐसा विचार कर देरी से आए। तो लक्ष्मी जी आई कि मेरे को भी जगह मिलनी चाहिए। तो महाराज वहां तो रोम रोम में सब देवता बने हैं, जगह है नहीं। तो गऊ में जगह तो हमारी भी मिलनी चाहिए जरूर, अच्छी बात है। गाय का गोबर है उसमें आप रह सकती हो, तो लक्ष्मी जी में गोबर में रही। गंगा जी आए कि मेरे को भी रहने के लिए स्थान होना चाहिए, तो सा गोमूत्र है, अब तो गोमूत्र और कुछ जगह है नहीं, गोमूत्र में गंगा जी रहती है। तो आज कहीं भी पवित्रता करनी हो, चाहे जनना सोच हो चाहे मरना सोच हो, ये अशुद्धि दो तरह के बड़े मानते हैं, सुआ सूतक। तो बालक पैदा होता तो असुआ कहते हैं, मर जाता तो सूतक कहते हैं, दोनों को भी सूतक कह देते हैं। तो उनकी शुद्धि की जाए, बालक का नामकरण किया जाए, तो गाय का गोबर लाओ और उसका चौका लगाओ, उस पर सूर्य का पूजन होता है। और घर में अशुद्धि है तो उसको गोबर गौमूत्र ला करके छिड़को, जिनसे वो गौ जगह पवित्र हो जाए। मरना शौच होता है तो उसमें भी जब 11 दिन हो जाए, 12 दिन हो, तब उसको शुद्धि की जाए, तो गोबर से नहीं पो और गौमूत्र लाकर छिड़को और गंगा जी को लाओ, ऐसे लाकर उसकी शुद्धि की जाए। तो बालक जन्मता है तो गोबर से गोमूत्र से शुद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण भी पूतना के थनों पर मिले तो उनको लाए, तो उनमें फिर गोबर में स्नान किया गया, गोमूत्र में स्नान करा गया और गौ का पूंछ ऊपर घुमाया गया कि जिससे ये लाला शुद्ध हो जाए और इसकी अलाय बलाय टल जाए, कोई विघ्न मिट जाए। और उसका स्तोत्र पढ़ा है, अंग अंग में देवताओं परमात्मा का स्थान स्थापन किया है उसे, तो उस जगह भगवान नाम की महिमा बहुत आई है। सर्व अंगों में सब जगह भगवान का नाम लाले की रक्षा करे, पवित्र करे, ऐसा आया। भगवान का नामकरण हुआ तो गौशाला में हुआ, कहाँ नामकरण करे जो पवित्र जगह हो। तो गायों के रहने का गोठ होता है, गौशाला जिसमें गाय रहती है, वहां पर एक पवित्र जगह ये है, गोबर गोमूत्र होता रहता है, इस वास्ते महान पवित्र जगह है, यहाँ भगवान का नामकरण हो। तो कृष्ण बलराम का नामकरण वहाँ हुआ है। गर्ग जी महाराज आए हैं, ये सब बातें आप जानते ही हो। तो कहीं भी अशुद्धि होती है तो उसको शुद्ध करते हैं गोबर गोमूत्र से। द्विजाति होते हैं तो उनको कहा है कि जन्म न जाए थे शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते वेद पाठात भवे विप्रह और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये श्लोक है, ये ब्राह्मण के लिए है, ऐसा नहीं कि वो जिन्हें उतरने से द्विज हो जाएगा, ये तात्पर्य इसका नहीं है। ब्राह्मण के घर जन्म तो जन्म से जन्म न जाए थे शूद्र, वो संस्कार करने से द्विज होता है और वेद पढ़ने से वो विप्र होता है और तत्वज्ञ होने से जीवन होने से वो ब्राह्मण होता है पूरा। तो ये बात बताई गई। तो वो जनेऊ जब देते हैं जिससे कि वेद पढ़ने का अधिकार पाता है वो, तो उसमें पहले पंचगव्य प्राशन किया जाता है, भूखा लगता है वेद वो व्रत किया जाता है, उसमें गाय का गोबर गोमूत्र दूध दही और घी, ये पंच गव्य कहलाता है। दूध दही घी तीन तो ये, एक गोमूत्र एक गोबर, ये मिलाकर उनको खिलाया जाता है, फिर जिन्हें दी जाती है वो पवित्र हो जाता है। तो गोमाता से पवित्र होने पर जिन्हें दी जाती है जो वेद का अधिकार होता है। ब्राह्मण पंडित का लड़का भी जब तक जनेऊ न ले तब तक वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। तो गौ माता की कृपा से वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। ऐसी पवित्रता गौ से आती है, सब जगह का शुद्ध होती है। तो गोमूत्र लाओ छिड़क दो, गोबर का चौका लगा दो। सब महात्माओं की बातें भी ऐसे हमने सुनी है। एक बात याद आ गई, एक जाटनी थी, जाट में होते तो खेती करते हैं ना कृषक, खेती करने वाली एक माई थी, तो वो एक साहूकारों के घर में जो वेश्या बन जाती है बढ़िया उनके घर में काम धंधा करती थी। तो वहां संतों को बुलाए तो वो देखती थी संत आए, तो संत आवे तो पहले आंगन में सब में पानी और गोबर मिला करके सब जितना आंगन है वो सबको लीप दिया, उनसे पतले पतले गारे से मसोता लेकर और गोबर और गोमूत्र और बनाकर उनसे सब जगह साफ कर दिया। साफ कर दिया फिर महाराज पधारे संत, तो उनके एक आसन में लगाया उनकी पूजन के पुरुषों से रहा, वो ज्यादा कही वो बात ज्यादा बढ़ाना नहीं, सार सार बात कहता हो। फिर भोजन कराने को बैठाए, भोजन कर बैठे पंक्ति लग गई, अब पंक्ति में सब परोसने लगे, महाराज को हवा करने लगे सभी और परोसने लगे, आराम फूल चढ़ाए माला पहनाई सब। तो वो जात नहीं बोलेगी आप क्या कर रहे हो, ये क्या करते हो, कहते हम अपने जीव का कल्याण करते हैं, अपना उद्धार करते हैं, संतों की सेवा करने से संग करने से उद्धार होता ये करते हैं। ठीक ऐसा हुआ, भोजन कराया, फिर जो उर्दमोल मदन बोला, फिर जटागट संप्रमक बोला, सब बोला, ठीक तरह से हुई प्रसारी हुए, भोजन हुआ, बाद में पार्वती पते हर हर करके महाराज आसमान पधार गए। तो ऐसी बात उसने सुन रखी थी, तो वो फिर अपने घर पर गई, वहां रहने लगी, वहां रहने लगी तो कई संत आए, संत आए तो भाई मेरे तो महाराज की पूजन करना है। तो उन दिनों में शीत काल था, ठंडी पोष का महीना ठंडी पड़ रही थी, तो गोबर गोमूत्र लाई और आंगन नीप दिया, खूब गाढ़ा गाढ़ा झाड़ा झाड़ा नीप दिया, वो नीप करके ऊपर पंक्ति लिए बैठा दिए, महाराज को बैठाया और करने लगी हवा। वे कहते माई क्या कर रही हो, कहते हैं हम सिया मरते हैं, मारवाड़ी भाषा में सिया मरा हुए, के मरो न ठरो मारे जीव रो भलो करो, और जीव रो भलो करने रो उपाय मैं सीख रहा हूँ सेठा के वहां से, जो मैं भलो करो हवा करने लगी भैया ठंडी लग रही है कैसा, मरो न ठरो मारे जीव रो भलो करो। तो ऐसी रीत थी कि महाराज पधारे घर पर तो गोमूत्र गोबर लेकर सब से पवित्र कर दो, रसोई बनाओ तो रसोई रे बर्तन सब मांझ कर साफ कर देना, फिर दूसरे दिन रसोई बनानी तो वे तो मांझ कर साफ कर दिया, अब सूर्य कैसे करे गोबर गोमूत्र लेकर पानी में डालकर मसूदो बनाकर उसे सब जगह ठीक कर दे तो पवित्र हो गई वह रसोई बनेगी, जिसमें ठाकुर जी के भोग लगेगा, फिर भोजन करेंगे, भगवान को लगन प्रसाद पाएंगे। तो गोमूत्र से पवित्र होती है, पवित्रता होती है इतनी बात नहीं है, इसमें बड़े जहर के रोगों जो कीटाणु होते हैं वे कीटाणु मर जाते हैं, गंगा जी में रोग के कीटाणु मरते हैं, ऐसे गोमूत्र में भी कीटाणु मरते हैं। आयुर्वेद की जितनी दवाइयां होती है उनमें बड़े बड़े विष होते हैं उनको शुद्ध करते हैं, सोना है चांदी आदि जो धातु चीज है उनको शुद्ध करते हैं, तो उनको बताया कि तेले तक्रे गवा मूत्रे, तेल में उनको भिजो कर साफ करो, उनको बुझाओ तपा करके, सोने तेल में बुझाओ उनको तपा करके और छाछ में बुझाओ और फिर गोमूत्र में बुझाओ, जिनसे वो महान जहर जो होता है वो शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध होता है दवाएं बनती है जिससे बड़े बड़े असाध्य रोग मिट जाते हैं। कुसीरा होता है तो वो भी उपजहर में जहर नहीं है, भिलावा है सिंगी मोरा है, ये बड़े भयंकर जहर होते हैं, तो उन जहरों को शुद्ध करने के लिए बात होती है। भिलावा होता है भल्लातक कहते हैं संस्कृत में, अपने भिलावा कहते हैं, उनको शुद्ध किया जाए तो वो फल होते हैं, उसमें ऐसे कतर करके उनको साफ करके और कूड़ करते हैं, तो उनमें ऐसे एक तेल निकलता है, वो अगर लग जाए यहाँ तो शरीर सूख जाएगा। उस खोपरे से फिर रगड़ करके खोपरा उससे लेते हैं तो वो ठीक होता है। ऐसे उनको साफ करते हैं। तो जहरों को साफ करने के लिए, धातुआदिक चीजों की भस्मी बनाने के लिए गाय का, गाय के दूध की छाछ हो, गोमूत्र हो, उनसे होता है। ऐसे आजकल हमने सुनी है कि गोमूत्र से और गोबर से कई दवाइयों का आविष्कार हुआ है। बहुत शुद्ध शुद्ध जिनके बहुत रोग किसान मर जाए और रोग है वो मिट जाए, निरोग हो जाए, ऐसे होता है। और मैंने देखा है कि जब हृदय में यह पीड़ा होती है तो उसके ऊपर गोमूत्र लाकर और गोमूत्र को गर्म कर दे, उस लोहे की चलनी रख दी, उस पर पुरानी रुई जो उसको रख दिया, उससे सेक करने से हृदय के रोग मिटते हैं या हृदय की धड़कन मिटती है। ऐसी बिना मैंने देखा है, ऐसा करते हैं उसे ठीक होता है। इस तरह के बड़े बड़े रोगों में गोमूत्र आदि का प्रयोग करता है। हम वामदेव जी महाराज यहाँ रहते थे, आप जानते ही हो, अब भी वह है, उनसे पूछ भी सकते हो। उन्होंने कहा था, मैंने सुनी थी, दमे का रोग हुआ तो वो रोग जल्दी शांत हुआ नहीं, कई दवाइयां की, फिर बछड़ी का गोमूत्र रोजाना एक दो तोला लिया तो उससे वो उनकी बीमारी शांत हुई। ऐसे दमा आदि हो तो बछड़ी का गोमूत्र लेना चाहिए, रोजाना छोटी बछड़ी दूध पीने वाली उसका गोमूत्र लिया तो ठीक होता है। बड़ी बूढ़ी गाय का गोमूत्र तेज बहुत होता है, इसमें तेजाब होता है। एक भाई ने वो ले लिया था तो आंतों में घाव पड़ जाते हैं, ऐसा तेज होता है। उसको लेना हो तो पानी मिलाकर, गंगा जल मिलाकर नहीं लेना चाहिए, बहुत तेज होता है। बछड़ी होती है दूध पीने वाली, उसका गोमूत्र ठंडा होता है, ठीक होता है। तो पेट के रोगों को, हृदय के रोगों को वो मिटाता है। ऐसे बालू रेत होती है, वो बिल रहती रोजना ली जाए तो आंतों को बहुत साफ करती है, रोबित करती है। तो गोमूत्र से, गोबर से ये बात होती है। कई रोग मिटते हैं, उन रोगों का हमें ज्ञान नहीं है, परंतु ऐसी बात हमने सुनी है और आविष्कार किया है, ऐसा हमने और आविष्कार हो रहा है। एक काशी जी में आदमी मर गया था, उसको सांप काट गया, सांप काटने से मर गया। मर करके और मणिकर्णिका घाट उधर जो स्मशान है वहां ले गए, वहां जला के गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। तो ले गए तो बाबा जी बैठे थे, उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या के मरा, सांप काटा सो मर गया, इधर जाओ, लिटा दिया। ये मरा नहीं है, ये तुम जला दोगे, मरा नहीं है। कि मरे तो बिल्कुल प्यार नहीं आते, शरीर ठंडा हो गया, कि भले हो जाओ, मरा नहीं है। क्या करो, गाय का गोबर लाओ। तो गौ का गोबर लाकर बिछा दिया और बिछा करके ऊपर को लेटा दिया, उसके ऊपर गोबर दे दिया, खूब गाय का गोबर। कहा के नाक साफ रखो, आंखों पर, मुंह पर, सब जगह, कानों पर, सब जगह गोबर थाप लो, नासिका के छेद है ये साफ रखो। तो उस कुछ देर, कुछ देर रखा तो सांप का जहर उतर गया, गोबर ने खींच लिया, तो उसको श्वास आने लगे और ये तो जीता भाई, कहते जीता, ये मरा नहीं था, उस जहर के कारण से मूर्छा हो गई, दशा हुई है जहर से, तो वो जी गया, गोबर से मर जाता है। तो गोबर में और मिट्टी में जहर खांसने की शक्ति होती है। गौ माता है, पृथ्वी माता है, तो माता बालक का पालन करती है। आपके हमारे शरीरों में मिट्टी तो है और क्या है, तो मिट्टी का इलाज होता है अपने सूट ये ना भी, उसके नीचे यहाँ पर मिट्टी की पट्टी ली जाती है, प्राकृतिक इलाज करते हैं, उनमें देखा होगा, हमने देखा किया भी है। सरदार शहर में चातुर्मास था, तो चातुर्मास में बड़ी बेचैनी हुई, मेरे को कुछ दस्त लगने लगी, दस्त लगे जो दस्त लगे पेशाब न हो, और बड़ी बेचैनी। हम सोए थे, कई सज्जन सोए थे, राम निवास के लादने वाले भी सोए ही थे, तो मैं वहां से उठा, उठकर गया टट्टी गया, टट्टी कर जाकर गया तो आगे ऐसी श्रद्धा टूट गई कि मैं गिर गया। तो ऐसे सरक सरक करके और राम निवासी को जगाया कि महाराज मिट्टी लाओ आप। तो भी मिट्टी लाए और मिट्टी ला करके मेरे पेड़ पर रखी, भिजो कर लगा रखी, उसे बदल में सूढ़ चलने लगी विषूची का, जिसको हैजा कहते हैं। दो दवाई होती है तो उल्टी होती है, उस टट्टी होती है, पेशाब नहीं होता है, ऐसी थे घबराहट सूढ़ चल रही। जो वो मिट्टी लगाने से एकदम शांति हुई, ये मेरी भी बात है। तो मिट्टी है, गोबर है, इनमें एक जहर दूर करने की शक्ति है, रोग दूर करने की इसमें शक्ति है, और इनसे जमीन वो पुष्ट होती है। जमीन से तो गऊ पुष्ट होती है और गऊ से जमीन पुष्ट होती है। अब खाद देते हैं, अब विदेशी खाद आने लगा है, वो एक दो तीन वर्ष दे दो फिर जमीन बहुत खराब हो जाती है, फिर उपजाऊ रहती नहीं। विदेशों में इन खादों से ऐसी खराब हुई है वहां पर, अब यहाँ से गोबर ले जाते हैं। बम्बई में रुपया किलो, दो रुपया, डेढ़ रुपया किलो गोबर गाय का ले जा करके चल के जहाजों में भर भर कर विदेश ले जा रहे हैं। जमीन को उर्वरा करने के लिए भी उपजाऊ हो जाएगा। तो गोबर से पृथ्वी पुष्ट होती है और पृथ्वी से घास होता से गौ पुष्ट होती है। आपस में गौ माता और पृथ्वी माता का आदान प्रदान होता है, इससे संसार ठीक होता है। गोबर के रहने से दो तीन वर्षों में जो खेत निकम्मा हो जाए, खाद देते हैं, परंतु गांव से बाहर खेत में घर बना कर रहते हैं, उन घरों को ढाणी कहते हैं। ढाणी तो ढाणियां सौ सौ वर्ष की ढाणी, उनमें खेत पौधा नहीं होता, पुराना नहीं होता। गायें बैठती है, गोबर करती है, गोमूत्र करती है, उसमें जमीन सदा सौ वर्षों तक चलाते रहते हैं, उपजाऊ रहती है, स्वतः गायें बैठती है वहां कारण से। ऐसी बातें बहुत स्थली में, मारवाड़ में ऐसी बातें है, मेरे देखी हुई है और जानने वाले जानते ही होंगे। तो इस तरह से गऊ से वो जितनी पुष्टि होती है इतनी दूसरे खाद से नहीं होती। तो इस तरह से गऊ है जिगे की महाराज बड़ी महिमा है। गायों के दूध से वो कंस के जो चाणूर और मल्ल थे ना, तो वो मल्ल है जो कुश्ती करी तो भगवान ने पछाड़ दिए। तो लोग कहते हैं ये गऊ का मक्खन खाते हैं, गऊ का दूध पीते हैं, इस वास्ते बड़े बलवान हो गए है। भगवान की तो क्या बात है, पर गोपाल भगवान गोपाल लाल आज ही पद गा रहे थे, गोपाल लाल नंद जी का लाल, तो नंद जी का लाल लाल गोपाल है, तो गा पा रहे थे गोपाल है, जो गौओं का पालन करेगा उसका नाम गोपाल है। तो गौओं के पालन के लिए भगवान ने अवतार दिया, अवतार देकर गायों चराई, बछड़े चराए, गौओं की रक्षा करी। और काम पड़ा तो क्या हम वैश्य हैं, वैश्य जाति बताई, ऐसे तो क्षत्रिय थे पर अपने वैश्य जाति बताई, जिसने अपने गोवर्धन की पूजा कराई। तो हमारा गोवर्धन ये है, गौओं को बढ़ाने वाला गोवर्धन है, तो गोवर्धन है इसकी पूजा हो, उसकी पूजा कराई है। आज भी दीपावली के दिन दूसरे दिन गाँव में घरों में मैंने देखा है गोवर्धन पूजन होता है। गोबर लाकर इकट्ठा करते हैं, उसमें खाचर है, बेर है, ऐसी चीजें लाकर धरते हैं, बाजे के सिटारे हुए धरते हैं, पूजन करते हैं। मेरा देखा हुआ आजकल तो भाई जमाना विचित्र है, तो पता नहीं है कहाँ है इस बात है, पूजन करते हैं। गोबर का पूजन होता है, गोवर्धन पूजन होता है, और इंद्र का मान मारा भगवान ने कहा गोवर्धन की पूजा करी। और माता को माता सोदा जी कहती है मेरे गिरिराज महाराज की कृपा से मेरे ग्वालिया आया है घर में, एक छोटा सा ग्वालिया आया है, ग्वालिया गाय चलाने वाला एक आया है गिरिराज महाराज की कृपा से। तो गिरिराज महाराज की कृपा मानते ही है, सब जाते हो आप परिक्रमा करते हो गिरिराज की, अरे गिरिराज की कृपा है। ये गिरिराज क्या है, रावण का जब राम जी के साथ युद्ध हो रहा था तो मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रयोग किया, वो शक्ति लगने से मूर्छित हो गए, फिर वैसे इलाज किया गया नहीं, मेरा भाई वो सुषेण वैद्य लाए, उनसे सब इलाज कराया, क्योंकि उत्तराखंड में बूटी है वो संजीवनी आ जाए तो ये जी सकता है। उस समय में हनुमान जी गए हुआ तो वो बीच में राक्ष मिला और कई वो जानते ही हो, तो वहाँ गए तो बूटी का पता नहीं लगा, वो चमकती है जगत तरह चमकती, पता नहीं लगा कौन सी बूटी है, रात में प्रकाश करती है वो। मैंने भी एक छोटी लकड़ी देखी जो कोई जलती हो जिस तरह से चमक होती है, मैंने देखी ऐसी 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 बूटियां है वह। तो बूटी लाने में संदेह किसी ले तो उन्होंने पर्दी उठा लिया, पर वो टूटा करके चलते थे और चलते चलते मार्ग में उसका थोड़ा टुकड़ा गिर गया, वो गिर गया जिसको उठाते वो गिरधारी नाम हो गया। हनुमान जी का नाम गिरधारी कौन है, छोटा बड़ा कोई काम क्या होता है, बड़े आदमी काम करते हैं तो उनमें उनका नाम होता है गिरधारी। गिरधारी है क्या, हनुमान जी लाल पर्वत का टुकड़ा है वो, इतना वो भी गिरिराज हो गया, भगवान का भक्त हो गया, बड़ी पूजा होती है। हनुमान जी महाराज पर्वत लाए थे तो इस तरह से दोनों चल लाए थे, तो गायों की और पृथ्वी की पूजा करते हैं, तो गोर जो गायों में क्या है, वो गोवर्धन है जो गौओं को बढ़ाने वाला है। इस वास्ते भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र हमारे, कभी देखा है तुमने इंद्र को पूजा करते हो क्या करते हो, ये गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता है, फिर पूजन कराए, बड़े बड़े लड्डू बनाए और भगवान भी वहां बैठ गए। साहब देखो कैसे गिरिराज जी महाराज कैसे है, जो आप लोग तो लीला की बात देखते ही हो, तो गौओं के कारण से ही गिरिराज की पूजा हुई, प्रत्यक्ष हमारे गिरिराज पर गाय सड़ती है जिससे दूध और दही होता है, बछड़ा बछड़ी होता है, सब हमारा पालन से ही होता है। तो गायों के पालन करने के लिए भगवान ने गौ चराई, गोपाष्टमी आती है ना तो गोपाष्टमी में गौ का पूजन किया जाता है। हमने एक बात सुनी कि वे वोट देने का दिन ही गोपाष्टमी रखा है, जो हिंदू कोई वोट नहीं दे रखे तो यूं कर अपने मुफ्त में काम कर ले, बड़ा कपट करते हैं, बड़ा छल करते हैं। अब कहें क्या बताओ, बड़े को कौन कहे, अब बड़े आदमी बड़े ऐसा बड़ा का पूजन करो क्या करें, आदर करो इस तरह से। और अभी ये रखाया है दिवाली का, अपने धनतेरस का रखा है, जिनके वो पूजा नहीं करे वे वोट न दे, दूसरे वोट जीत जाए। मैं जोधपुर में कहा था, जोधपुर में गणेश जी की पूजा के विघ्न डाला, तो मैंने जोर से कहा कि गणेश जी के पूजन करने से आपके क्या हानि हो जाएगी, अरे काम गणेश जी का पूजन न करने से आपका क्या फायदा हो जाएगा वो तो बताओ हमें। जोर से कहा कोई बताओ भाई, अब बता दो आप, तो इसमें निरर्थक क्यों करो, हिंदू वहां पर पूजा करे जुलूस निकाले क्या हर्ज है आपके। तो ऐसी दशा आज हो रही है, यह आगे भीषण बात कह दी। तो गायों के पूजन से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, और ये जो रघुवंश चलता है ना, रघु का वंश चला है, तो ये किसने चला है, दिलीप महाराज थे राजा दिलीप, तो अयोध्या के वो राजा दिलीप थे, स्वर्ग में काम करने वो गए, पीछे आए तो बीच में गऊ मिली, उस गऊ को नमस्कार नहीं किया, जल्दी जल्दी चले, तो गाय ने सांप दिया कि तेरे पुत्र नहीं होगा, उनके कारण से पुत्र नहीं हुआ। तो वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा, रघुवंश जब गए तो वशिष्ठ जी के पास चलो, गुरु जी महाराज पास चलो, सा राजा लोग राज्य करते थे, सम्मति ऋषियों की मुनियों की लेते थे और उनसे करते थे काम, राज वो करते थे परंतु सम्मति उन ब्राह्मणों की पंडितों की ऋषियों की मुनियों की चलती थी। तो कहा भाई तुम गौ का अपराध किया तो गौ की रक्षा पालन करो। तो उस समय में वशिष्ठ जी गया पर नंदिनी नाम गौ थी, गोरी गाय, मारवाड़ में करे पहले आवे जी करी गोरी गाय क्या हुए, तो गोरी गाय का बड़ो उत्सव, तो गोरी गाय ही वह नंदिनी नाम था बछड़ी, वो बशीर जी गौ थी, तो उसमें महाराजा दिलीप और उनकी महारानी सुलक्षणा, ये दोनों राजा रानी गए, कोई नौकर साथ में नहीं लिया, और गौरी सेवा करी, बड़ी तत्परता से बड़ी उत्साह से सेवा करी। जिसमें रघुवंश में वर्णन है, पुराण में वर्णन आता है, वो पुराना वर्णन लेकर उसी को लेकर कालिदास ने रघुनाम मनमय वक्षे, मैं रघुवंशियों के वंश का वर्णन करता हूँ, उसका नाम रघुवंश है, काव्य का नाम ही रघुवंश। तो दिलीप ने वो सेवा करी, तो ऐसी सेवा करी महाराज, रात्रि में तो सुदक्षिणा महारानी उनकी जगह साफ करके नाम रघुवंश है, काव्य का नाम ही रघुवंश। तो दिलीप ने वो सेवा करी, तो ऐसी सेवा करी महाराज, रात्रि में तो सुदक्षिणा महारानी उनकी जगह साफ करके बालू बिछा कर ठीक कर देती है और चारा रख देती है और रात्रि को दीपक कर देती है, फूलों से पूजन करती है। और सुबह फिर क्या होगी, पूजन करे सुदक्षिणा आकर के पूजन करती है, कुमकुम केसर चावल अक्षत सबसे आरती करती है, धूप करती है, ऐसे भोग लगाती है, गुड़ देती है, ऐसे आरती करती है। इसके बाद महाराज दिलीप गोचारण के लिए स्वयं जाते हैं, गऊ के पीछे पीछे गुस को स्वच्छंद चलने देते हैं, सीधी सीधी चलती रहे, गऊ की जहाँ मर्जी हो जिधर मर्जी हो जावे, पीछे साथ में धनुष बाण लिए हुए रक्षा करते हैं। तो कालिदास दस्त दस्तता मुत्सलित प्रयाताम ऋषे नुषे मासन बंद धीर जलाभिलाषी जल मा ददा नाम साये बताम भूपति रन्व गच्छत स्थिता स्थितम। वो खड़ी है तो राजा खड़े रहते हैं, चलता प्रायता वो चाहती है तब पीछे पीछे चलते हैं, और वो घास चरती है तो रोटी खाते हैं, और जब पीते हैं वहाँ जंगल में तो जब पीती है तब पानी पीते हैं। छाये बता भूपति रनों का छत उमा कालिदास, जैसे छाया साथ चलती है ऐसे दिलीप महाराज गुरु की छाया की तरह सेवा कर रहे थे, ऐसे सेवा करते थे। शाम को आ जाती तो सामने सुदक्षिणा महारानी जाती, बड़े आदर से गऊ को घर पर लाती, लाती और पूजन करती। ऐसे 21 दिन हो गए, सप्तव्यतियु त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनो धर्मोऽस्ति तस्य सप्तव्यतियु त्रिगुणानि, सात को तीन का गुणा दे तो 21 दिन होते। तो 21 दिन हो गए तो नंदिनी ने समझा कि मेरी सेवा कैसी करता है, पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा, गाय की सेवा करो। उस सेवा के लिए तो एक दिन महाराज वो चलते चलते गुफा में चले गई। राजा थोड़ी कि वो पहाड़ के ऊपर जो जंगल था उसकी शोभा देखने को लगे, उधर दृष्टि लगी गाय गई गुफा में, गुफा में से एक सिंह निकला, शेर निकला, ऊपर आक्रमण किया गाय के, आक्रमण किया तो मेरा दिलीप तो धनुष बाण धनुष चढ़ाए हुए बाण रखते हुए खेचर अभी लगाया इस तरह से, तो वो ऐसे लगाया धनुष को लिया और बाण करते ऐसे किया, वो चित्रार्पित आरम्भ थे, जैसे चित्र लिखे तो लिख दो लिख दिया जो लिखे, ऐसे ही खड़े रह गए, ये हाथ ऐसे रहा, ये हाथ ऐसे ही रहा। मन में आता जोश की गऊ के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, मैं रक्षा नहीं कर सका हूँ, बड़ा जोश है, भोगी वो मंत्रों से रुद्ध वीर्य लिखा है, वो बड़े जलने लगे करें क्या। तब वो सिंह बोला है कि तू तो आप आश्चर्य करता है, क्या हो गया मेरे ऊपर जमराज का भी महाराज बल नहीं जो आक्रमण कर सके, तू क्या करता है, तू सबसे मेरे बाण चलते नहीं, बाण चला तो मेरे क्या होगा, मेरे कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाण कितने भी शस्त्र अस्त्र का प्रयोग कर दे, तुम जानते नहीं मऊम परवा पश्य देव दारूम पृथ्वी कृतोषो वृषभ ध्वजे न यो हेम कुंभ स्तर स्कंद से मातु पैशाग्रज्ञ। सामने देखता है ये वृक्ष खड़ा है देवदारू का, देखता कि नहीं ये देवदारू का वृक्ष है, तो ये पुत्री कृतोषो वृषभ, भगवान शंकर ने इसको पुत्र बना लिया है, बेटा बना लिया, क्या हुआ कि वो पार्वती जी इनका सेजन पालन करती थी, तो एक दिन शिव जी की सवारी आई तो जिसके तो उसके ऊपर छाल उतरी हुई, वृक्ष की छाल उतर गई, तो उतरते ही माता पार्वती को दुख हुआ, जैसे अपने पुत्र सदानंद के कोई घाव लगा रहे घायल हो जाए, ऐसा दुख हुआ माँ को। तो उसने कहा ये बात, तो स्कंद से माँ तो पैसांग रसज्ञ, पार्वती जी ने अपने थनों का दूध शीतल के इन्हें पाला है, ऐसा है ऐसा उतर गया। तो फिर मैं कुंभ मैं मेरा नाम बताया, कुंभ मित्र कुंभोधरम नाम निकुंभ मित्र, कुंभोधर मेरा नाम है, निकुंभ का मैं मित्र हूँ। और यहाँ पर भगवान शंकर ने कहा कि देखो तुम यही रहो, तो मैं शंकर के साथ में था। क्यों साथ में? साथ भगवान नंदीश्वर पर चढ़ते तो मेरे पर चरण रख करके नंदी पर चढ़ते, नंदी ऊंचा होता है। इस वास्ते भगवान शंकर के चरणों से मेरा शरीर पवित्र हुआ है, इस वास्ते मेरे पर कोई प्रहार करने के समर्थ नहीं है, भगवान शंकर की कृपा है। तो समझे मेरे हाथ रुक गए, चला कर देख ले क्या करेगा, मेरा बड़ा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उसने परिचय दिया। तो फिर वह परिचय दिया, जब मेरे संदेह दूर हो गए, ठीक है तो कह तू गाय को छोड़ दे। गाय को छोड़ू कैसे? कई दिन मेरे को कह दिया यहाँ भोजन करने के लिए अंकागत सप्तवृत्ति बताया कि कोई नजीक यहाँ प्राणी आ जाए उसको खा सकते हो, मंदूर पर शिकार करने के लिए तुम बाहर नहीं जा सकते, भगवान शंकर की आज्ञा है। वो सामने देखे देवदारू मैं बैठा हूँ, अरे यहाँ गऊ आ गई आज, आज सोनित पारना भी आज पारना खोलूंगा, कई दिनों का भूखा हूँ, इस बार से भोजन करूंगा। सप्तम निवर्तन से मिठाए लज्जा, तुम अपनी लाज छोड़कर तुम चले जाओ। गुरु भगवान दर्शित श्री भक्ति, तेने अपने गुरु जी की भक्ति बता दी, वशिष्ठ जी की भक्ति तेरी हो गई। शस्त्रेण रक्षम तद सत्य रक्षम न तत्य शस्त्र विलक्षण होती, जो शस्त्रों से रक्षा नहीं कर सकते वो न करने से उसका जश खत्म नहीं होता, वो करना चाहता है तू तो मन तेरे शस्त्रता नहीं, तो बिहार ले जा शस्त्र मत कर, तुम जा वशिष्ठ जी के पास, ये तो मैं पालना खोलूंगा हर खाऊंगा। वह तो दिलीप ने बहुत कहा तुम छोड़ दे मेरी बात समझे, क्षत्रिय क्षत्रिय हमारा नाम है, क्षत्रिय जाति है, क्षता दुखात्राय क्षत्रिय दुख से रक्षा करे उठाना क्षत्रिय होता है। अरे मेरे समान गाय मेरे सामने गाय हमारी जा रही है, उसे दुख से मैं रक्षा नहीं कर सकता, तो मेरी तो निंदा हो गई, क्षत्रिय पढ़ाई मेरा डूब गया, मैं कैसे छोड़ दो, इसको छोड़ना पड़ेगा, तुम छोड़ना पड़ेगा, मेरे पारना में कपारना खोलूंगा, ऐसे कह करके फिर दिलीप ने बहुत बातें कही। तू किसा है मेरे समझ में देखता है, तो तू पारना खोले तो मेरे को ले ले, मेरे को खा ले, तेरा पारना भी खुल जाए, गाय भी बच जाएगी। तो कह तू क्या करता है, मूर्ख देखता है, विचार बूढ़ा प्रतिभाषी भी तुम, तू कह नया कांत विदम बबुल से अल्प से है तो बहु हाथ में छन विचार मूढ़ा प्रतिभाषी भी तुम, तू तो मूर्ख दिखता है, एक गाय के लिए प्राणों को दे रहा है, जीता रहे तो कितनी ऋषि मुनियों की गायों की कितनी सेवा करेगा, और तेरे मरने से एक गाय बचेगी, तो तू विचार तो कर जा, मूर्ख सफाई क्या करता है ऐसे। दिलीप ने सब सुन लिया, कहते मैं नहीं, मैं तो तू ले लो ले दो। फिर चलते चलते अंत में ये बात कही कि देखो अच्छे पुरुष होते हैं संबंध मा भाषण पूर्व माहु व्रतस्व संगत और वनांत, श्रेष्ठ पुरुषों के आपस में बातचीत होती तो मित्रता हो जाती है। आज जंगल में तेरे मेरे कितनी बातें हो रही है, इतनी बातें होने पर तू मित्र है मैं तेरा मित्र हूँ, अरे मित्र की बात मित्र को ठाननी नहीं चाहिए, वो तेरे को माननी पड़ेगी, व्रतस्व संगति और वनांत, इस बात से तू निषेध नहीं कर सकता, तो ले ले ऐसा कहा। उसने कहा ठीक है मित्र भाई, मित्र तो हो गया, संबंध मां भाषण पूर्व हो या वृद्धाश्रम न संगति और वनांत, आज जंगल में एकांत में बात तेरी मेरी हुई है, तू मित्र है मेरा, तो आज तो मेरी बात छोड़ दे और मेरी बात मान ले, तू तेरा पारणा कर ले, गाय वो छोड़ दे। तो उसने कहा भाई ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है, वो स्वीकार किया। राजा ने क्या किया कि अपने शस्त्र रख दिए और कपड़े भी उतार दिए, और जैसे मांस पिंड फेंके यू अपने शरीर को फेंक दिया, ले खा ले इसको खा ले, गाय को छोड़ दे। तो जो ही दिलीप अपने शरीर को फेंकता है तो ही उसमें फूलों की वर्षा होती है कि बड़ा धन्य है जो गऊ के लिए प्राण दे रहा है, और गऊ खुश हो गई, नंदनी राजी हो गई और बोली कि बेटा मैं खुश हूँ, प्रीतास्मि ते पुत्र भरम भीष्म, मैं प्रीतास्मि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पुत्र भरम भीष्म वरदान मांग बेटा, वरदान मांग मैं खुश हो गई हूँ। तो ऊपर देखा तो वो कोई कर पर्वत है, वो ना कोई सिंह है कुछ नहीं, है जैसी जैसी चलने लगते थे कि माया मुसमुद भाभी में परीक्षित हो सी, मैंने माया से तेरी परीक्षा करी, परीक्षा से कैसा कि मेरी रक्षा करता तो है मन कहाँ तक करता है, तो अब तुम खुश हो जाओ और तुम मांगो वरदान। तो उसने बताया कि हमारा वंशस्य करता अनंत कीर्ति सुदक्षिणायाम तनियंग जाते, उसने कहा महाराज मेरे वंश को पैदा करने वाला वंश नष्ट हो रहा है, उस वंश को करने वाला हो मेरी महारानी सुदक्षिणा में पुत्र हो मेरे, ये मैं चाहता हूँ। तो बेटा मेरा दूध पी ले, अभी पी ले दूध, बेटा हो जाएगा दूध पी ले। तो परीक्षित ने कहा माँ मैं कैसे दूध पी लू, आप वशुटी गाय हो, मैं चराने के लिए आया हूँ, तो चराने के लिए आया दो, मैं तो चराने बस आया हूँ, दूध पीने के लिए आया हूँ, दूध नहीं पी सकता, आपकी पानी है तो कृपा करना मेरे पर क्षमा करो, मैं नहीं पी सकता, हम तो राजा है षष्ठांश मुर्या रक्षित आया, खेती करने वाले जो प्रजा है वो जितना पैदा कर ले खेत हो जाए उसका छठा हिस्सा लेते हैं, तो छठा हिस्सा मैं दूध ले सकता हूँ, बसड़ा पी ले महाराज के वो जितनी जो यज्ञ की बात है वो सब पूरी हो जाए और उसका छठा हिस्सा दूध हो वो मैं ले सकता हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से, दूध ही पी सकता। तो नंदनी बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। अब विचार करो पुत्र के लिए सेवा करता है, यार आप मर जाए तो पुत्र किसकी होगा सेवा करनी उसमें इसकी तो परवाह नहीं है, अपने आप को फेंक दिया खा ले तू, तेरा दोनों बातें रह जाए, तेरे पारना भी खुल जाए और मेरी सेवा भी हो जाए ठीक हो जाए, इस तरह से। तो इस तरह से करके उसने जब रघु जन्मा, वो दिलीप के रघु जन्मा, इस बात रघुवंशी कहते हैं, दशरथ वंशी नहीं कहते, अजवंशी नहीं कहते, रामवंशी भी नहीं कहते, रघुवंशी है, रघुवंशी बनरा गुण का गाढ़ा रजो रघुवंशी, रघुवंशी बन रहा है वंश तो रघु कहता है, तो इस तरह से रघु जन्मा है, बड़ा प्रभावशाली है रघु, बड़ी बचत कथा थी उनकी। तो गायों की रक्षा के लिए महाराज वंश नारायण की रक्षा से अब गायों की हत्या करते हैं, क्या दशा होगी राम जी जाने भगवान जाने, भाई गायों की कत्ल बहुत बुरी तरह से हो रही है, गायों की बछड़ियों को लेकर के सैकड़ों और उनको बेतर से मार मार के चमड़ा ऊपर खून किसकी जोड़ने लगा, इस समय में जीते जी तक उसे चमड़ा उतारा, वो नरम होगा इस वास्ते वो कितनी बुरी दशा से मारे जाए। नीति में भी मैंने सुना है, राज के विधान में भी बात सुनी है, किसी को प्राणी को मारना तो ऐसा नहीं मारना, पट मार दो उसको, ऐसी तकलीफ मत दो जिसमें ऐसी ऐसी मारते हैं, गायों को मारने के लिए जहाँ जगह है ऐसे नीची जगह जाती है, जो वो जाती दौड़ जो भीतर जल्दी जल्दी दूर से आगे होंगे झड़ी हुई वृत्ति होती है उसमें इकट्ठी हो जाए, दरवाजा बंद करके फिर गर्म गर्म पानी छिड़कते हैं उन पर, गर्म हो जाए पैसा छिड़कते हैं रुआ उड़ जाए, वो ऐसी गायों के गर्म गर्म का ऊपर का चमड़ा जीते जीते का उतारा जाए जिसमें चमड़ा नरम होता है, उसके मांस के बड़े दाम बढ़ते हैं, ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी है, ये केवल क्या ऐसे ऐसे होता है, इस तरीके से वो गायों को गोद करते हैं। बम्बई में वहाँ हम गए थे तो उसमें भी जाकर देखा तो गोबध होता है वहाँ, तो गए थे हम बाहर बाहर पर मोटर से फिरे, जवान जवान पहल बढ़िया बढ़िया ट्रक भरी भरी आ खड़े रहे, वो सींग सींग दिखते बहुत दूर तक, उनको कड़ा में घात करके घर मार देते, ऐसी दशा हो रही है, बछड़ा बछड़ी का मांस कहाँ तक सच है वो तो राम जी जाने, मैंने सुना जरूर है गाय का मांस है वो 80 रुपया किलो 90 रुपया किलो ऐसे बिकता है, और बछड़ी बछड़े का 300-300 रुपया 1 किलो का ऐसा मांस उसका बिकता है, तो बछड़ा बछड़ी को भी मार देते है, अब जन्मेगी गाय कहाँ से, गाय खराब हो जाएगी। अब वो गायों की ऐसी स्कीम सरकार की, उस बात को मैंने सुना है कि उनको स्कीम सोची कि विदेश से गौ लाओ, गौओं का दूध ज्यादा होता है उनका तो वे ठीक होगी, तो वे गौ ला करके हिन्दुस्तान में रखी है, वे गौ खाती बहुत ज्यादा है और दूध उनका ज्यादा होता है पर घी नहीं होता है इतना, जैसे हमारे देशी गाय घी घी होता है गायों में, उतना घी नहीं होता, रखने वाले कहते हैं उनसे मैंने सुना है ये। अब वो दूध है, वो दूध क्या है, गायों क्या है, और बैल देते जिस बैल से खेती होती है, खेती से अन्न होता है, और महाराज थली में मारवाड़ में उधर दो थली में कुएं है 300-300 फुट नीचे पानी, उसे पानी निकालते हैं तो भैंसे के चमड़े की रस्सी बनता है, लाव होती है, और गाय के चमड़े का कोष बनता है, और बैल निकालते हैं खींच करके तब पानी आता है। महाराज ऐसा हमारे देखा हुआ है, और आप जानते हैं ये प्रसिद्ध है, मैं बता भी सकता हूँ, मैं कोई जाना चाहे तो गाँव में जाओ तो बैल वो चलती है, लाव में लीजेगा लगाते हैं, वो चलते चलते बहुत दूर चले जाते हैं तो बीच में एक आती है लाल के बीच में, उसको लगा करके से बैठ दूसरी जोड़ी चलती है वहां जाती है, तब बीच में भरा आता है, उसको लूली लग रहा था, लूली कहते हैं, लूली लगे बीच में, तो दो बैल चार बैल जाते हैं तब निकले पानी आता है एक बार ऊंचा, वो भी चमड़ा भैंसगा, वो जो गऊ का कोष होता है वो गाय का चमड़ा उनसे करते हैं। अब उसके बिना अन्न कैसे पैदा होगा, बैल बैल तो मार दिए जाते हैं, बैलों के मारने की तो खुली है ही, और गायों के मारने की भी खुली है, और बछड़ा बछड़ी तो बिल्कुल जल्दी मारते हैं जिससे दाम बहुत बढ़ता है, और 300-300 रुपया 200-250-300 रुपया किलो ऐसे बछड़ों का मांस होता है। वे मछड़े जब काट दिए जाते हैं, बैल बना दिए जाते हैं, उनका कोष निकाल दिया जाता है, तो उनको मांस इतना कीमती नहीं होता है, उनका वो छोटे बाल न बनते हैं, जो आउखा कहते हैं संसार कहते हैं नाम के, तो आउखे बच्चों का बहुत ज्यादा होता है। आज मनुष्य को और स्त्रियों को दोनों को संसार कर देते हैं, लड़का न जन्मे दोनों नहीं, तो पुरुष भी बीज स्थापन न करे और स्त्री अपने भगवत धारण न कर सके ऐसा बना दिया, उनको दोनों को संसार कर दिए तो उसकी बछड़ा नहीं होता, इस तरह से उन लोगों बैलों को बनाते हैं, उन बैलों से सब होता है। अन्न और जल और कपड़ा ये तीन के बिना निर्वाह नहीं होता, महाराज जी नहीं सकते, अन्न के बिना जल के बिना कैसे जियोगे और कपड़े के बिना कैसे रक्षा होगी, तो बनी वही पैदा होती खेती में तो बैल से होती है, दूध है जो गाय का दूध जैसे बछड़े पैदा होते हैं, भैंसा और नहीं चल सकता, भैंसा और बैल अगर लड़े तो भैंसा मार दे, इतना बलवान होता है भैंसा, पर गाय गाड़ी में अगर जोत दिया जाए उनको लगा दिया जाए तो जीभ निकाल दिया जाए, ऐसे तावड़े में चले तो भैंसा चल नहीं सकता, थका हुआ मादा बैल है वो चलता है, ये बातें मैंने देखी हुई है, ये कोई तमाशा नहीं है, कोई इतिहास की बात है नहीं, हमारे सामने है, आप भी देख ले, तो भैंसा उतना काम नहीं करता। ऐसे ये जो विदेश की गाय है इसका बछड़ा होता है, बस ये कुकुद थोड़ी होती ही नहीं, अब बैल हुआ जुआ कहाँ रखे, किस तरह से हल चलावे, कैसे गाड़ी चलावे, साक्षी भैंस के ऊपर होते क्यों होता है, तो अपन बैल और इनमें गर्मी में महाराज ठंडे देशों में रहने वाली गाय है, अब यह गर्मी में वो चल भी नहीं सकते भैंसे की तरह, और भैंसों का दूध होता है वो घी तो उसमें ज्यादा होता है मन सात्विकता नहीं होती है, भैंसा होता है भैंसे को जमराज चढ़ते हैं, और गऊ का नंदी जिसको भगवान शंकर कल्याण करने वाले वे चढ़ते हैं, और भैंसों को जमराज आते हैं, वो भैंसा आज पालन करो, भैंसों का दूध बम्बई में हम गए थे दूध गावा जहाँ है वो फैक्ट्री है, आग से दूहे जाते हैं, दू करके फिर गर्म होकर के फिर मशीन से ही शीशियां भरी जाती है, हमने देखा है वहाँ, पर भैंसे ही भैंसा के भैंसों का दूध है, भैंसे के दूध से बुद्धि मोटी होती है, भैंस मोटी ताजी तो होती है पर बुद्धि नहीं होती, ये हमने देखा है, गाड़ी पर हम चलते हैं मोटर पर तो सामने देखे तो भैंसा खड़ी है और गधा खड़ा है, तो यही देखते रहे वही अरे ठोकर देंगे, तो गाय चलते ही गाय चट एकदम सीधी किनारे हो जाती है, आप देख लो, ये देखिए हमारी बात है, को गाय के दूध में वो बुद्धि है, गधे में और भैंसे में वो बुद्धि नहीं है, भैंसे में भी खड़ी लगी देखती रहेगी मोटर आ गई धक्का लग जाए, गाड़ी में ऐसे महाराज रेलगाड़ी में ऐसे भैंसा मरती होने देखी है, खड़ी रहनी वही, और गाय जल्दी नहीं आती, गाय तो बुद्धि होती है उसमें जब एक तरफ हो जाती है, सीधी सारी बात है, अब भैंसों का दूध पिए तो बुद्धि कैसी होगी, और ऋषि मुनि गायों का दूध पीते थे तो कैसे कैसे शास्त्र लिखे, कितने कितनी बातें लिखी है, कितनी सात्विकता गाय के दूध में है, गाय के घी में है, पंचगव्य होता है वो भी प्रश्न किया जाता है, पंचगव्य होता है, पंचगव्य ये बताया आपको वो होता है, उसके सिवाय गौओं का घी, दूध दही शहद और मिश्री एक पंचामृत होता है, उसमें गाय का होता है, गाय की अलग लगी है, गोबर कैसी गाय का लाना चाहिए, दूध कैसी गाय का लाना चाहिए, दही कैसी गाय का लाना चाहिए, उसमें अलग अलग गायों को लिखी है, ऐसा लिखा हुआ मेरे पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से पंचगव्य है, पंचामृत है, जिससे पवित्रता आती है, शुद्ध आती है, ये पंचामृत रोगों को दूर करने वाला है, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही और शहद और मिश्री, ये पंचामृत है, ये तेज़ करने से होता है, उससे कई रोग दूर होते हैं, ऐसा पंचामृत है। मेरे लिया होगा, आपने लिया होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है वहाँ ये पंचामृत होता है, मिठाई होती है, सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है, तो वो प्रसाद मेरे में लिया हुआ है। तो ये गाय में कितनी विलक्षणता है, कितनी शुद्धि, कितनी निर्मलता है, और गौओं की कितनी पवित्रता है, गाय का दान करने की बात बताई है कि एक गाय जितनी बैठे इतनी जमीन का दान भी बड़ा भारी होता है, ज्यादा दान ज्यादा होता है, और गौआ बैठ रही है वो जमीन बड़ी पवित्र होती है। तो गौ बैठ रही है तो आपने देखा होगा, फिर देख लेना जो गौ वापस खड़ी गई फिर बैठती है, फुंकार फुंकार करती है, तो शास्त्र में लिखा है फुंकार से पाप खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं गौ के, ऐसे गौ होती है। और विवाह होता है तो उसमें लगन होता है, तभी विवाह का लगन आने पर विवाह किया जाता है, और विवाह नहीं मिले तो गोधूल का है, ये मारवाड़ में गुदल क्यों का सवाल, गुदल क्यों कहते हैं, गुदल के मान गोधूलिका, गोधूलिका का मतलब जिसमें जंगल से गाय आवे उनकी खुर से गऊ खुर से रजी उगती है, उस रजी के समय विवाह कर दो, वो मांगलिक समय है, बड़ा शुद्ध समय है, निर्मल समय है। तो गौओं की खुरों की रज्जी का कितना महत्व बताया है, वो गुजर गोधूलिका। अब भगवान को राम जी का विवाह हुआ है उस समय में, गोधूलिका के समय हुआ विवाह, उसमें रामायण आया ऐसा भी विमल बेड़ा है ऐसी गोधूलिका की, उस समय में राजा राम जी का विवाह हुआ है। तो विवाह का शुद्ध मुहूर्त होता है गोधूलिका का समय, तो उनके खुरों की कितनी रुझ होती, जिसके भगवान कृष्ण गौचारण जाते थे तो उनके सभा का वर्णन आया है, दो बार आया है दसवें स्कंध में, जिसमें भगवान के वो गौ रजी लगी, जो केशव के ऊपर रजी लगी हुई है, फाफड़ा पर गौ रजी लगी, शरीर पर रजी गौवारी लगी हुई है, ऐसे कृष्ण भगवान का श्रृंगार का वर्णन आता है। तो गौओं की सेवा करी है, तो गायों की बहुत महिमा है। अर्जुन को 12 वर्ष वनवास भोगना पड़ा है गायों की सेवा के लिए। एक दिन नारद जी महाराज आधारे, महाभारत की कथा है, नारद महाराज पधारे कि तुम भाई पांचों पति एक द्रौपदी है, तो सुंदर अपसुंद की कथा बनाई सुनाई, वो स्त्री के लिए दोनों मर गए, तो तुम्हारे कड़े नहीं हो जाए, तो क्या कहा महाराज, 70 दिन कैसा दिया भाई, 70 दिन पांचों का, तो 535 हुए तो 350-60 दिन होते हैं, तो उन बात करके 70 दिन 71 दिन, वो एक दिन राजा रहे तो एक रानी के साथ में एक राजा ही रहे द्रौपदी के दिन, उतने दिन के बाद में दूजा पांडव रहे, ऐसे उनके पंचायती कर दी, उसमें नियम बना दिया कि जिस दिन जिस भाई की बारी है वो ही रहे, दूसरा चला जाए तो उसको 12 वर्ष का वनवास हो, दूसरा जा न सके, ऐसी बात थी। युधिष्ठिर महाराज एक दिन महल में थे, एक ब्राह्मण आया कि मेरी गायों को डाकू ले जा रहे हैं, रक्षा करो, तो अर्जुन ने कहा कि भाई मेरा तो धनुष बाण रह गया महल में, महल में आज युधिष्ठिर महाराज है, मैं कैसे जाऊं, तो गायों को ले जाते हैं रोज, तो कह रहे मैं ठीक है 12 वर्ष का वनवास सह लूंगा गायों की रक्षा के लिए, तो वो गए धनुष लाने के लिए। उस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी पाशा खेल रहे थे, इनको पासा का व्यसन था, शेर जी ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज सभी गुण थे परंतु एक पासा खेलने की बात ही खराब आदत, ये खराब आदत की दुर्शा दुर्दशा ऐसी हुई, तो खेल रहे थे वो उसमें लेकर चले गए, गायों को ले जाकर पास दे दे, पीछे युधिष्ठिर महाराज से आकर कहा महाराज मेरे को आज्ञा हो जाए मैं वनवास में जाऊँ, यार तुम तो छोटा भाई है कोई बात है, आ गया तो क्या हाल है, और तुम उस बताओ खेल रहे तो कोई बात नहीं है, जो मैं कहता हूँ माफ कर दे। अर्जुन ने कहा मैं ऐसा नहीं चाहता, धर्म में बहाना बाजी नहीं करनी चाहिए। 12 वर्ष का वनवास भोगा अर्जुन ने, फिर 12 वर्ष तक जंगल में रहे, घर पर नहीं आए, गौओं की रक्षा के लिए, केवल गायों के लिए। तो गायों की रक्षा की कितना ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने कितना अपना समय भेंट किया है गायों के लिए। वे गायों का कत्ल हो रही है आज, गो हत्या हो रही है, और उसी को वोट देते हैं लोग। जब क्या कर, मैं कहूँ तो मेरी निंदा करते हैं, स्वामी जी भजन ध्यान की बात कहो, ये बात क्यों कहते हैं। मैं तो कहता आया हूँ भाई, जब से राज सोया वोट का जमाना सोया तब से कहता आया हूँ, आज नहीं कहता हूँ। उस समय में इलेक्शन में काम किया मैंने फिर करके, तो वे इलेक्शन में फिरने वाले कहते थे कि स्वामी जी आप भी घूमते हो। मुझे नहीं कहते, मैं तो घूमता, तुम भी घूमते हो। मैं तो सत्संग के लिए घूमता हूँ बरसों से, किसी गांव गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया। तो आपने घूमना शुरू किया और आप बंद हो जाओगे, मेरा घूमना पहले से फिर जारी रहेगा सत्संग करने के लिए। तुम भी घूमते हो, मेरे को क्यों कहते हो आप। तो इस तरह से मैंने किया है, तो मैंने वो स्वतंत्रता से खड़े रहते थे उनको ऐसे में किया, जीत भी गए, कोई मेरी सामर्थ्य नहीं, पर तो मैंने प्रचार किया, जीत गए, वो फिर कांग्रेस में मिल गए। सुमानी महाराज उनके पिताजी नागशेठ जी कहा, हम रहते थे उस समय चित्रकूट में, तो चित्रकूट में ऐसी बात थी, मन में विचार अगर वो बोलना ही बंद करे, सब कर एकांत में भजन करें। तब शेठ जी ने कहा कि भाई एक काम करना है, जीता ना एडिट के लिए, तुम इलेक्शन में जाओ। मैं महाराज इलेक्शन जानता नहीं, क्या इलेक्शन हो रहा है क्या नहीं, बात है बस बातें सुनी, उन जाओ तुम। मेरा विचार बात मेरे को याद है, बोलो ये जो टेढ़ी टांग वाले है ना, ये बहुत विलक्षण है। मेरा एकांत में विचार किया कि भजन ध्यान करेंगे, तब इलेक्शन में भेजा जाओ, अब लड़ाई करो कि वोट इनको दो, वोट मत दो, अरे मेरा काम नहीं है ये। परंतु महाराज कृष्ण भगवान बड़े विचित्र है, उद्धव जी रहना चाहते तो जंगल में भेजा, अर्जुन कहते मैं भीख मांग रह जाऊ तुझ नहीं करते, युद्ध करो। उल्टी उल्टी बात करते हैं ये, उल्टी गलत। गोपाल सिक्का से लखिया ने जाए काबुल मेवा न्यूज एग्रीमेंट टेंटी खाए, ये बात है महाराज वो दशा है। तो उसमें मैं उसमें काम किया गया कई वर्षों तक, 5 वर्ष ही होते ना मैंने काम किया, कहता था। अब आजकल मैं तो चुप रहता हूँ, मजे स्मरण करता हूँ और उनको भी यही बात कहता हूँ, परंतु ये चिढ़ाते हैं। तो मैंने वहां कहा जोधपुर में, मैं हमारी भिक्षा मांग कर खाता हूँ, मेरे को तंग क्यों करते हो तुम, मैं तो कुछ नहीं करता तुम्हारा, बिगाड़ता नहीं। तो एक भाई बोले तेरे को तंग क्या करते हैं, मगर हमारे गणेश जी की पूजा रोकते हैं, उसके अंदर दुरुष नहीं निकलते होते, ये मेरे को दुख देते और मेरे को दुख क्या देंगे सर, तो मेरे को क्यों दुख देते, क्यों छेड़ते हो। मैं मेरा भजन करता हूँ, अभी कई वर्षों से मैं इलेक्शन में जाता नहीं, मैं कहता ही नहीं, मैं मेरा चुपचाप राम राम करो भैया, अपने सुनो, हमें राज तो लेना है नहीं, कृषि मिनिस्टर बनना है नहीं, विश्वास हम क्यों करें, हम हमारा भजन करते हैं, परंतु फिर मेरे को छेड़ते हो आकर के। और भगवान गणेश जी का उत्सव निकला जिसमें तुम्हारी क्या हानि हो जाएगी, लोग करने से क्या लाभ हो जाएगी। उसमें पूर्णिमा आया कि ये रोजाना स्वभाव पड़ जाएगा, गणेश जी के पूजन का जुलूस निकलेगा, तो अभी नहीं रोकोगे तो सदैव है, तो रीत पड़ जाएगी, तो तुम्हारी क्या हानि हो जाएगी, रीत पड़ जाएगी तो। ये कारण बताया उसमें कि रोजाना की रीत हो जाएगी, उसमें रोका उन्होंने। तो ऐसी बात आई महाराज, अब मैं क्या करूं बताओ, घड़ी दिखा रहे हैं, बात तो ठीक है। गौओं की महिमा कहे तो गौओं की महिमा तो मैं कह नहीं सकता, बड़ी विचित्र महिमा है। गौओं के नाश करने से नुकसान है, जितने जीव है उन गौ को देकर राजी हुए, पीछे मनुष्य को देकर के राजी हुए, ब्रह्मा जी की भगवान राजी हुए, तो गौ को देकर राजी हुए, गौ में सब देवताओं का निवास, ऐसी महान पवित्र देव गौ। गोबर और गोमूत्र पवित्र किसका होता है आप बताओ, सिवाय गऊ के बता दो किसी का, कितनी पवित्र है गो, धूली पवित्र है, गऊ का दर्शन पवित्र है, गऊ को नमस्कार करो ऐसा पवित्र है। गावो विश्व से माता, गौआ विश्व मात्र का विश्व जितना संसार मात्र की माँ है गौआ। मुसलमान आवे तो उसको भी दूध देती है, बछड़ा देती है, हिंदू आवे तो, मुसलमान आवे तो, ईसाई आवे तो, गाय का कोई भेदभाव नहीं है कि भी हिंदुओं को ही दे मुस्लिमों को दे, बीमार खा जाती है उनको दूध देती है। ऐसी गौओं की रक्षा करो, हिंदू का खास धर्म है। गौ में और मंदिरों में हम सब एक हो जाते हैं। दक्षिण के भी उत्तर के जितने सज्जन है दक्षिण जाते हैं, बद्रीनारायण तक जाते हैं, हमारे उत्तर के भागवत कन्याकुमारी तक समुद्र किनारे तक दक्षिण में तीर्थों में जाते हैं। ये तीर्थ और गौ है दो हिंदुओं का एक खास समुदाय संगठन करने वाली चीज है। ऐसी गौओं की रक्षा करो, अपने अपने घरों में रखो, बछड़ियां रखो, अपने घर का खोल दो और साग पर बताओ जो छिलका फलों का छिलका दे दो और धोकर के लोग बर्तन साफ करते हैं वो पानी पा लो, इतने पालन कर लो बछड़ी का, क्योंकि दूध देने वाली गाय हो जाएगी घर में, इसमें रखो आप लोग तो ठीक है। चमड़े के जूते है चमड़ा बना पैर में चमड़ चमड़ा फिर सूत्र मार देंगे चमड़ा फिर यहाँ पैर देता यहाँ तक चमड़ा चमड़ा डूब गया पगड़ माथे ती डूब गया सब चमड़े ही चमड़े में गायों की हत्या ही हत्या में इतना काम हुआ बड़ा तेरे को तो छेड़ने पड़ा तो बात करनी पड़ती है, नहीं तो मैं क्यों कहता था। पर गायों की हत्या हमारे भूल बहुत लगती है, जोर तो हमारे चलता नहीं क्या करें। अरे आपके हाथ में यहाँ बात है, आप करो तो कर सकते हो।